श्लोक संख्या 24। सुदुस्तरात् नः स्वान् पाहि कालाग्नेः सुहृदः प्रभो न शक्नुमः त्वच्चरणम् संत्यक्तुम् अकुतो भयम्। सुदुस्तरान्ह स्वान् पाहि सुदुस्तरान्नस्वान् पाहि कालाग्ने सुहृदप्रभो कालाग्ने सुहृदप्रभो नाशक्नुमस्त्वच्चरणम् तन्यत्यक्तुमकुतोभयम् सन्त्यक्तुमकुतोभयम् सन्त्यक्तुमकुतोभयम् सुदुस्तरान्नस्वान् पाहि सुदुस्तरान्नस्वान् पाहि कालाग्ने सुहृदः प्रभो कालाग्ने सुहृदः प्रभो नाशक्नुमस्त्वच्चरणम् नाशक्नुमस्त्वच्चरणम् सन्त्यक्तुमकुतोभयम् सन्त्यक्तुमकुतोभयम्। சரணம்.
सुदुस्तरात् दुर्लभ न हम स्वान अपने भक्तों की पाही रक्षा कीजिए, काल अग्नि काल रूपी अग्नि से सुरदह आपके असली मित्रगण प्रभो हे परम स्वामी न शक्नुम हम सक्षम हैं, हम अक्षम हैं। त्वच्चरणम आपके पांवों को संत्यक्तुम छोड़ सकते हैं, अकुतः अकुतः भयम सारे भय को भगाने वाले अनुवाद और तात्पर्य इस ज्वाइंग रेसे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, हम आपके सच्चे मित्र तथा भक्त है। आप इस दुर्लभ काल रूपी अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए। समस्त भय को भगाने वाले आपके चरण कमलों को हम कभी नहीं त्याग सकते। तात्पर्य, वृंदावन वासियों ने कृष्ण से कहा, यदि यह भयानक अग्नि में परास्त कर देती है तो हम आपके चरण कमलों से बिछड़ जाएंगे, जो कि हमारे लिए असह्य है। अतः आप हमारी रक्षा करें, जिससे हम आपके चरण कमलों की सेवा करते रहें। ओम ज्ञात वृंदस्य ज्ञानांजन शलाकर चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणलिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। अभी दावाग्नि से भगवान ने किस प्रकार ग्वाल बालों को बचाया उसका वर्णन इस श्लोक में हो रहा है। पिछले श्लोक में जिसका तात्पर्य नहीं है, ग्वाल बालों ने कृष्ण बलराम का शरण लिया। जैसे रात हो गई थी तो उन्होंने सोचा कि रात को जाना उचित नहीं है। सारे ब्रजवासियों ने कृष्ण को वैसे ही देखने का लालसा थी, और जैसे कालिया दमन होने के बाद शाम हो गई थी, सूर्यास्त हो गया था, उसी नदी के तट में सब लोग सो गए। तो सब लोग सोए तो रात को क्या हुआ, अचानक से ये दावाग्नि आया। तो ये दावाग्नि क्या है, उसके विषय में कहा गया है कि दावाग्नि भी एक असुर था। अपने आप से नहीं आया था ये दावाग्नि, दावाग्नि एक असुर का असुर ही दावाग्नि का रूप लेके आया। वो सोचा कि अभी हमें सारे व्रजवासियों को मार दूंगा, ठीक है, कृष्ण को मारना मुश्किल हो जाएगा, चलो अगर व्रजवासियों को मारेंगे वो खत्म हो जाएंगे तो कृष्ण अपने आप खत्म हो जाएगा। पहले ऐसा था कि पॉलिसी ये था कि मैं असुर को कृष्ण को मारेंगे सारे ब्रजवासी मर जाएंगे, लेकिन कृष्ण को मारना में बहुत मुश्किल हो रहा है तो नहीं हो पा रहा है, इसलिए एक असुर ने सोचा कि ब्रजवासियों को मारेंगे तो कृष्ण मर जाएंगे अपने आप। ये भाव से दावाग्नि आया, जब आए तो सबको एकदम बिल्कुल घबराहट हुई सारे ब्रजवासियों को। तो उन लोगों ने कृष्ण और बलराम से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया, कृष्ण कृष्ण महाभागाय हे रामामित विक्रम, हे कृष्ण कृष्ण, दो बार उच्चारण क्यों किया गया है, कृष्ण कृष्ण भय के मारे कोई व्यक्ति एक बार नहीं बोलता है कोई चीज को। मान लो कोई कुछ कोई पीछे पड़ गया, कुत्ता पीछे पड़ गया, भूत पीछे पड़ गया, क्या वो बोले, वो क्या बोले, भूत भूत बोलेगा, ऐसा कुछ बोलेगा नहीं, एक बार नहीं बोलेगा, दो तीन बार बोलते हैं कि नहीं। भय में एक शब्द को दो तीन बार उच्चारण करने का स्वभाव रहता है। कृष्ण कृष्ण महाभागा, हे महाभाग्यवान, महाभागा आपने अपने भाग्य को दिखाया, अपने भगवत्ता को दिखाया, और साथ साथ में राम राम भी, मतलब बलराम भी, उनकी शक्ति भी ब्रजवासी जानते थे कि वो ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान है। तो कृष्ण कृष्ण महाभागा, अभी कोई कह सकता है कृष्ण को बुलाया, कालिया को तो मार सकते थे लेकिन दमन किया, बहुत डांस किया, बहुत लंबा समय, यू नो कितना, ऐसा किसी ने कहा 45 मिनट ऐसा कुछ लीला चलाता है कोई, ऐसा कोई किसी ने कहा 3 घंटा, अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन है। अगर ये अग्नि के साथ खिलवाड़ करें जैसे सर्प के साथ खेला, अभी अग्नि तो पूरा जला गया है कि नहीं, उनके साथ डांस कर नहीं कर सकते है कि नहीं। तो तुरंत ब्रजवासियों ने कहा कि हे रामा अमित विक्रम, आपका विक्रम जो है, आपका पराक्रम जो है अमित, वह कोई सीमा नहीं है, और ये जो दावाग्नि आया है ये इससे हमको बचाइए। ये घोरात्मनो वहनी, इतना घोर वहनी, इतना घोर अग्नि है ये कि तावकान ग्रसते हिना, ग्रसते मतलब ये सब हमको मार देगा, खत्म कर देगा, बहुत भयानक है, इसको तुरंत कुछ करना पड़ेगा, कुछ इलाज करना पड़ेगा। तब ये बात सुनने के बाद आगे ग्वाल बालों ने या ब्रजवासियों ने किस प्रकार ये जो निवेदन किया उसका वर्णन है। तो ग्वाल बालों को यानी ब्रजवासियों को डर लगा, क्या डर लगा, मृत्यु का डर लगा, मृत्यु के भय से ये श्लोक को उच्चारण कर रहे हैं। उच्चारण करते हुए क्या कह रहे हैं, सुदुस्तरान नहस्वान पाही, ये जो दावाग्नि है सुदुस्तरान, इतना भयानक है, नहस्वान पाही, आपके स्वान मतलब स्वानम मतलब आपके ही जो भक्त है, या हम जो है आपके बहुत करीब भक्त है, और उनको उनको आप पाही बचाइए, मृत्यु से बचाइए। कालाग्नि है सुरुद, ऐसा नहीं कि थोड़ा जल जाएगा, नहीं, कालाग्नि जैसा ही है। कालाग्नि का अर्थ है हमारा मृत्यु को, मृत्यु के समय यानी प्रलय के समय जो आने वाला अग्नि है उतना भयानक सा है। तो कालाग्नि है सुरुद प्रभु, हे प्रभु आप ही हमारा प्रभु हो, आप बोलोगे कहीं और जाओ, फायर एक्सटिंग्विशर लेके आओ, यमुना है पानी लेके आओ, जल में अग्नि में डालो जल लेके, ये सब कुछ काम नहीं होने वाला है। अगर सब लोग इतने सारे लोग हो, जाओ बाजू में तो यमुना है, पानी लेके आओ और आग को बुझाओ, वो बुझने वाला नहीं है क्योंकि बहुत भयानक सा है, तो हम मर जाएंगे। अच्छा मृत्यु का डर है, मरने का डर है, नहीं हमारा डर मरने का नहीं है, ये अग्नि की वजह से अगर हमारे हमने अपना प्राण त्याग किया, ओके, ना शक्नुम, क्या अर्थ क्या है, हम ये सहन नहीं कर सकते, क्या मृत्यु का सहन नहीं कर सकते, मृत्यु को तो सहन कर लेंगे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मृत्यु हो जाएगा हमारी, हम ये चीज सहन नहीं कर सकते, क्या नहीं सहन कर सकते, तच्चरणम संत्यक्तुम अकुतो भयम, संत्यक्तुम आपके चरण कमलों का त्याग या उनसे जो विरह है हम उसको सहन नहीं कर सकते, यानी आपके चरण कमलों का जो सेवा जो है उसका विरह जो है वो सेवा से वंचित होना उसका सहन नहीं पाएगा। तो मृत्यु तो कोई हमारा के लिए समस्या नहीं है, मर भी जाएंगे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मृत्यु होगा तो हमारा समस्या ये है कि आपकी चरण कमलों का दर्शन नहीं होगा, आपके जो चरण कमलों की जो सेवा है वो प्राप्त नहीं होगा, इसके वजह से हम चाहते हैं कि आप हमें बचाइए। अकुतो भयम्, आपकी चरण कमलों का लक्षण क्या है? जो व्यक्ति आपके चरण कमलों के नजदीक में है तो उसको भय कहां से है? हम तो आपके चरण कमलों के पास में हैं तो हमको भय नहीं है। किसका भय नहीं? मृत्यु का भय नहीं, किसी का भय नहीं है। लेकिन भय इसका है कि अगर हमको मृत्यु आ जाए, आपकी चरण कमलों की जो सान्निध्य है वो प्राप्त नहीं होगा, उसका भय है। अभी ये व्रजवासियों का भी प्रार्थना बहुत अच्छा है। एक तरीके से देखा जाए वो कहते हैं हमको कोई मृत्यु का भय नहीं क्योंकि हम आप तो चरण कमलों के नजदीक में हैं। लेकिन भय किसका है? भय उसका है कि हम आपके चरण कमलों का सान्निध्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो हमारा छूट जाएगा, इसका भय है। क्योंकि अघासुर आया था स्वागत ग्वाल बालों ने क्या किया था? कृष्ण है ना, हमको देखभाल करेंगे, चिंता करेंगे, अंदर प्रवेश किए थे। अभी समस्या ये है कि कृष्ण है, ये अग्नि आएगा तो सारे ब्रजवासी मर जाएंगे, तो मर जाएंगे तो कृष्ण के चरण कमलों का सान्निध्य नहीं प्राप्त होगा। जो कृष्ण के चरण कमलों का स्वभाव क्या है? अकुतो भयम्, जो भी व्यक्ति कृष्ण का शरण लेता है उनका कोई भय की आवश्यकता नहीं है, कोई भय नहीं है। क्योंकि प्रश्न उठा सकता है तो आपने तो शरण लिया हो ना, शरणागत व्यक्ति का भय क्यों है? हमारा शरण छूट जाएगा, आपकी सान्निध्य चरण कमलों की सान्निध्य छूट जाएगा, ये भय। साधकों के लिए एक उपदेश लें तो साधकों का एक ही भय है, भक्ति छूट जाएगी, एक ही भय है, और कोई चीज का भय नहीं है। धन चले जाएगा, मर जाऊंगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, उसका कोई भय नहीं रहता, निर्भय। अभयम सब सत्व संशुद्धि, अभय निर्भयता को शास्त्रों में, भक्तों के हृदय में निर्भयता को शास्त्रों में बहुत वर्णन किया गया है। अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग पुराण में, सारे घटनाओं में अगर देखेंगे तो एक तो प्रसंग रहेगा जहां अभय निर्भय रहता है भक्त। प्रभुपाद जी के नाम भी अभय है, फियरलेस। क्यों? जो कृष्ण का शरण लिया है उसको कोई डर नहीं है, लेकिन डर नहीं होने पर भी एक का डर है, क्या है? उसका भक्ति ना छूट जाए, माया ना पकड़ ले, उसका भय रहता है। एक बार प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे शिष्य जो है बहुत अच्छे, सब अच्छे, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, लेकिन एक ही समस्या है। क्या है वो समस्या? माया से जितना डरना चाहिए उतना डरते नहीं है, जितना माया से डरना चाहिए वो डरते नहीं। तो एक बार प्रभुपाद जी हाथ जोड़ के खड़े थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी व्हाट आर यू प्रेइंग टू कृष्णा? तो प्रभुपाद ने उनको देख के हंसते हुए कहा, आई एम प्रेइंग दैट आई शुड नॉट गेट इन टू माया। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान से कि माया में ना फंसूं। यानी दूसरे शब्दों में प्रभुपाद ने शिक्षा दिया, तुम्हारे लिए यही प्रार्थना है। जब तुम प्रार्थना करोगे ना, यही प्रार्थना करना होगा। यही मत पूछो मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारे लिए क्या करना, मुझे क्या प्रार्थना करना है वो पूछो। तो शिष्य का कर्तव्य यही पूछना कि मुझे क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हो। ये नहीं बात है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या प्रार्थना करना चाहिए। प्रभुपाद ने शिक्षा दिया कि प्रार्थना करो कहीं माया में ना फंसो, कृष्ण के चरण कमलों को ना भूलो, यही भय है। एक ही भय है भक्त का कि भगवान मेरी भक्ति ना छूट जाए, भगवान की विस्मृति का भय, यही की भय है। क्योंकि इस जगत में सबसे बड़ा फायदा अगर कुछ है तो भगवान का स्मरण, कृष्ण का स्मरण, और सबसे बड़ा नुकसान अगर कुछ है तो क्या है? वो कृष्ण का विस्मृति है। तो स्वाभाविक तरीके से हम कोई नुकसान होता है, घाटा होता है, उससे भय भी तो होते हैं। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट फियर इज आई शुड नॉट फॉरगेट कृष्ण, कृष्ण के चरण कमलों का विस्मृति, इससे बढ़कर कोई भय नहीं है साधक का। तो इस बात को ये लोग व्यक्त करते हैं, हम आपकी चरण कमलों के नजदीक में कोई चीज का भय नहीं, लेकिन भय है कि छूट जाए। तो ये श्लोक में इस बात को लोगों ने, ब्रजवासियों ने वर्णन किया। जैसे कृष्ण ने इन बातों को सुना, अगले श्लोक, आखिरी श्लोक इस अध्याय का, उसमें कहा गया है, इत्थम स्वजन वैकल्व्यम, इत्थम स्वजन वैकल्व्यम। कृष्ण ने देखा स्वजन, अपने भक्त जो है स्वजन वैकल्व्य, इतने परेशान है, बहुत डिस्टर्ब है, देख के पूरा अग्नि को देख के क्या हुआ, निरीक्षा जगदीश्वर निरीक्षा, कृष्ण ने निरीक्षण किया, कृष्ण ने देखा, देख के क्या किया, जगदीश्वर जो जगत की ईश्वर है, तम क्या हुआ उन्हें, तम अग्निम पिबत तीव्रा तीव्रम, तम कृष्ण ने क्या किया, अग्निम पिबत तीव्रम, तीव्र जो ये भयानक सी जो अग्नि है कृष्ण ने उन्होंने ऐसा पी लिया। और तीव्रम अनंतो अनंत शक्ति दृक, अनंतो अनंत शक्ति दृक, तो जगदीश्वर भगवान कौन है, अनंत है, तो अनंत के साथ साथ उनका वर्णन हुआ है अनंत शक्ति दृक, जो भगवान का वर्णन अगर किया गया है अनंत शक्ति दृक, जिसके पास अनंत शक्ति है इस प्रकार वर्णन किया गया है। अभी ये जो दावाग्नि जो है दो बार आया था, भगवान ने एक ही प्रकार का जो लीला दो बार दो लीलाओं से में किया, एक है ब्रह्मांड को अपने मुख में दिखाना, दो बार किया, दावाग्नि का जो लीला है वो भी उन्होंने दो बार किया, ब्रह्मा जी को विमान विमोहन करने की जो लीला है वो भी दो बार किया उन्होंने, दो बार ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे। तो ये दावाग्नि का दो बार लीला हुआ, एक इस अध्याय में एक बाद में 19वें अध्याय में आता है, 19वें अध्याय में आता है तो कृष्ण ने क्या किया, सारे ग्वाल बालों में बोला तो हम सब लोग आंख बंद कर लेना, सब लोग आंख बंद किया तो कृष्ण दावाग्नि पिया। अभी इधर ऐसा था कि ये सारे व्रजवासी इतने भयभीत थे, इतने भयभीत थे, कृष्ण अगर उनको बोलेंगे तो कुछ सुनने की तैयार नहीं थे, वो लोग सुनने की अवस्था में नहीं थे, कृष्ण को बहुत क्रोध आया, क्योंकि कृष्ण पहचाने कि ये जो दावाग्नि है एक बड़ा असुर है, उसको मैं कभी तुरंत खत्म कर दूंगा। अभी उनको पता भी नहीं लगा कृष्ण ने कैसे पिया, लेकिन पी लिया। इतना हद तक श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि तमग्निम अपिबत, खाली बोलने के लिए सुखदेव गुस्सा ने बोले हैं, लेकिन असित में कृष्ण को भी मालूम नहीं पड़ा कि ये दावाग्नि उन्होंने पिया करके। बोलने के लिए बोला गया है कि कृष्ण, क्यों, क्योंकि कृष्ण के पास अनंत शक्तियां हैं। इधर ये शक्ति, ये जो शब्द के द्वारा सुखदेव गोस्वामी ने कहा अनंतो अनंत शक्ति दृक, अनंतो अनंत शक्ति दृक, ये शब्द इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो है ये स्पष्ट रूप में नहीं कहा, उन्होंने अव्यक्त रूप में कहा, गौण रूप में कहा। कैसे कहा उन्होंने, अप्रत्यक्ष रूप में कैसे कहा उन्होंने, कहा कि भगवान की शक्ति एक है, सर्वसंहारिका शक्ति। यह सर्वसंहारिका शक्ति जो है वो उन्होंने ये शक्ति ने इस दावाग्नि को पी लिया। प्रश्न आता है वो शक्ति ने बिना कृष्ण का परमिशन के, बिना कृष्ण का आदेश के कैसे कर दिया, तब उसके लिए श्री विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं कि सारे शक्तियां ये भयानक सा ये जो अग्नि है उसको देख के भयभीत हो गए कृष्ण की सारे शक्तियां, और सारे शक्तियां अपने आप से बातचीत करने लगी, इतना भयानक सा है कृष्ण क्या कर पाएगा, बच्चा है ये भी जल जाएगा, हमको कुछ कर देना चाहिए। तो सारे शक्तियों ने तुरंत निर्णय किया, सर्वसंहारी का शक्ति आगे आके तुरंत उसको खत्म कर दिया अग्नि को। यानी ये जो दावाग्नि आया और ग्वाल बाल जो है वो जाके ब्रजवासी जो कृष्ण का शरण लिए, और कृष्ण को मालूम भी नहीं लगा दावाग्नि कब खत्म हो गया। सारे शक्तियां जो है कृष्ण की आदेश के अनुसार कार्य करती है, और कृष्ण जो भी करना है कृष्ण की परमिशन से करती है, लेकिन ये दावाग्नि इतना भयानक था कि कृष्ण, ये कृष्ण की जो शक्तियां हैं वो कृष्ण के ऊपर ही वात्सल्य आया, उनको ये शक्तियों को स्वभाव देखिए शक्तिमान के ऊपर वात्सल्य आया। क्या वात्सल्य आया, ये बच्चा है क्या क्या कर पाएगा, इतना अग्नि में क्या रक्षा कर पाएगा, खुद का रक्षा नहीं कर सकता दूसरों को क्या रक्षा कर पाएगा, हमको ही कुछ करना है, ऐसा लेके ये शक्तियों ने अपने आप से कार्य किया। इसकी वजह से इधर इस श्लोक में भले ही इधर कहा गया है तम अग्निम अपिबत तीव्रान, लेकिन शक्तियों को इंगित करने की वजह से ऐसा कहा गया है अनंतो अनंत शक्ति दिक, जो भगवान अनंत है, भले ही अनंत होने के बावजूद भी कृष्ण अनंत है, अनंत होने के बाद भी उनकी अनंत शक्तियों ने कार्य किया उनको मालूम ही नहीं पड़ा। तो ये पहला दावाग्नि का जो लीला वर्णन है। तो पहले दावाग्नि क्या है, व्हाट इज दिस? दोनों दावाग्नि एक ही जैसा है। जो मतभेद होता है वैष्णवों की समाज में, मतभेद की वजह से जो मनभेद होता है वैष्णवों की समाज में, उसकी वजह से क्या हो जाता है, मनभेद होने की वजह से अपराध करने लग जाते हैं सारे वैष्णव एक दूसरे के प्रति। जब एक दूसरे के प्रति अपराध करते तो क्या होता है, सबकी भक्ति नष्ट हो जाती है। ये दावाग्नि है। ये दोनों दावाग्नियों का एक ही प्रकार का स्वभाव है। भक्तिनाथ ठाकुर वर्णन करते हैं, जो दो वैष्णवों के झुंड में मतभेद होता है, या दो वैष्णवों के बीच में होता है, या दो संप्रदाय के बीच में होता है, या दो गुरुओं के जो शिष्यों के बीच में मतभेद होता है, वो मतभेद धीरे धीरे से क्या होता है, मनभेद के रूप में होता है। मनभेद जो अपराध के रूप में होता है, हम बोलते हैं हम उनके हैं उनके हैं, हम इधर के वैष्णव, हम गुजराती वैष्णव हैं, हम मराठी वैष्णव हैं। देखो ये भेद जो है भौतिक स्तर की विचार है, आध्यात्मिक स्तर में कोई भेद नहीं होता है। आध्यात्मिक स्तर में सब कुछ कृष्ण के साथ संबंध में है, लेकिन जब हमारी बुद्धि जो है भौतिकता से ग्रस्त हो जाती है तब हम भेद को देखने लगते हैं। ये जो भेद है उसकी वजह से उत्पन्न हुआ जो मतभेद मनभेद होता है वैष्णव के समाज में, ये सारा भक्ति को जलाने वाला है, अग्नि है। जानते हो हम ये मंदिर के भक्त है, वो हम ये मंदिर के भक्त है, हम उसके हैं, हम इसके हैं, हम इस गुरु के शिष्य हैं, वो आप उस गुरु के शिष्य हैं। इस प्रकार की जो बातचीत जो है, इस प्रकार की विचारधारा जो है, उसको दावाग्नि के बराबर तुलना किया गया है। ये दावाग्नि है। जो व्यक्ति जैसे राम और कृष्ण दोनों को शरण लिए, भक्तिनाथ ठाकुर वर्णन करते हैं, जब तक दोनों वैष्णव या सभी वैष्णव, सभी तथाकथित मत के जो वैष्णव हैं, साथ साथ में, इधर वर्णन नहीं आया कि अरे ग्वाल बालों ने अलग प्रार्थना किया, इसने अलग प्रार्थना की, उसने अलग प्रार्थना, सब साथ में बैठ के कृष्ण का शरण लेते तभी कृष्ण दावाग्नि को वो पी जाते हैं। तो ये दावाग्नि का ये अर्थ है। क्या दूसरा जो दावाग्नि है उसका विस्तार से वर्णन है, ये खाली चार श्लोकों में ये दावाग्नि का वर्णन है। पहला दावाग्नि, दूसरा दावाग्नि में कृष्ण स्वयं कहते हैं सब लोग आंख बंद कर लो, ऑल ऑफ यू क्लोज योर आइज, तब उन्होंने पूरा दावाग्नि को इन्होंने पी लिया था। हाँ, तो टाइम था, उतना भयानक सतलुज नहीं, इतना भयानक दावाग्नि था ये पहला वाला कि सारे जितने भी शक्तियां हैं वो भी भयभीत हो गए। भयभीत होकर कृष्ण की रक्षा करने के लिए उनका जो सर्वसंहारिणी जो शक्ति है उन्होंने पिया, कृष्ण को भी मालूम नहीं पड़ा कृष्ण ने पिया करके। दो जगह ऐसा वर्णन आता है कृष्ण को भी नहीं मालूम था कृष्ण ने मारा करके। पहला पूतना, पूतना का जब वध भगवान ने किया कृष्ण को मालूम भी नहीं पड़ा पूतना मरी क्या है। अगर मान लो कि अगर होश होता, अगर इतना बड़ा मालूम पूतना आई है इसको मारा मैंने, तो किसी को अच्छा लगता है क्या मरा हुआ शरीर के ऊपर खेलना? मरा हुआ शरीर को देख के एकदम बिल्कुल जिगुप्सा लगता है कि नहीं? लेकिन कृष्ण को ऐसा है जब पूतना के स्तनों के ऊपर खेल रहे थे आराम से, उसको मालूम भी नहीं पड़ा क्या हुआ, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इधर दावाग्नि अभी कृष्ण को भी भाई मालूम पड़ा कि क्या हुआ है, सर्वसमारिणी शक्ति ने इसको पी लिया, इस प्रकार कहा गया है। 10 मिनट बाकी हैं, थोड़ा सा हम श्रीपाद मध्वाचार्य के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्योंकि आज उनका तिरुभाव दिवस है। अदृश्य रौप्य पीठे दृश्यस्तु बद्री तटे, तो आज के दिन हुआ अदृश्य रौप्य पीठे दृश्यस्तु बद्री तटे। श्रीपाद मध्वाचार्य कोई और नहीं है, हनुमान है, वही हनुमान भीम के रूप में आए, वही भीम जो है वो मध्वाचार्य के रूप में आए। श्रीपाद मध्वाचार्य वायुदेव के अवतार है, लेकिन इस भौतिक जगत का वायु नहीं है बल्कि वैकुंठ का वायु है, जिसमें हम जब जानते हैं कि हमारे पास 10 वायु हैं, 5 मुख्य 5 गौण हैं, उनमें से भी मुख्य वायु है प्राणवायु। जैसे हम किसी का मृत्यु होता है हम क्या बोलते हैं, इसका प्राण चला गया, यानी आत्मा को शरीर के साथ जीवित रखने की जो क्रिया करने वाले जो तत्व है उसको प्राण कहा जाता है, प्राणवायु है। तो आध्यात्मिक जगत में जो वायु है वो प्राणवायु है, उसका ही प्रतिबिंब जो है ये जगत की वायु है, जिसके अंदर प्राण का अंश थोड़ा रहता है, इसके अगर हवा हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, प्राण चला जाता है। तो हमारा जो जीवन इसलिए है, कोई कहे रोजी आत्मा आपके शरीर में इसलिए जीवित है, उसकी वजह से नहीं है। अगर आत्मा को कोई शरीर में डालो तो इसका थोड़ी ना वो जीवित हो जाता है, नहीं होता है। प्राण, प्राणों की उपस्थिति की वजह से हम जीवित है, वी आर लिविंग बिकॉज ऑफ प्राण। जब किसी का मृत्यु होता है हम ये नहीं बोलते आत्मा चला गया, क्या 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 बोलते हम लोग, इसका प्राण चला गया। वो जो प्राण वायुओं की अधिष्ठात देव है, जो वैकुंठ के वायु है, वो उस वायु की बात हो रही है, वो हनुमान है, वो भीम है, वही मध्वाचार्य है। ऐसे मध्वाचार्य की जो लीलाओं को वर्णन करना बहुत अद्भुत है, उनकी लीलाएं, ऐसे 10 मिनट में उनके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है। त्रिविक्रम पंडिताचार्य उनके पुत्र, उनका नाम है नारायण पंडिताचार्य, उन्होंने एक ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम है सुमध्व विजय। त्रिविक्रम पंडिताचार्य रुद्रांश है, रुद्रांश भूतराज करके एक बड़े रुद्रांश है, रुद्रदेव के विस्तार है, उनका अवतार है। जैसे हनुमान जी कौन है, वायुदेव के साथ साथ में वो रुद्रांश भी बोला जाता है, लेकिन जब हनुमान जी मध्वाचार्य के रूप में प्रकट हुए, वही रुद्रांश जो है वायुदेव को स्तुति करने के लिए, यानी मध्वाचार्य को स्तुति करने के लिए, वो त्रिविक्रम पंडिताचार्य के रूप में आए। और उनके जो पुत्र हैं नारायण पंडिताचार्य, उन्होंने एक ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम है सुमध्व विजय। बहुत सुंदर तरीके से पूरा मध्वाचार्य के जो लीलाएं पद्य रूप में श्लोकों में प्रस्तुत किया उन्होंने। तो श्रीपाद मध्वाचार्य, जैसे हमने उनकी आइडेंटिटी हमने सुना, क्योंकि आज उनका तिरोभाव है तो थोड़ा ज्यादा तिरोभाव के विषय में चर्चा करेंगे। श्रीपाद मध्वाचार्य अनंतेश्वर मंदिर, आप पता नहीं कितने लोग उड़पी गए, उड़पी कृष्ण मंदिर के सामने एक शिव जी का मंदिर है जिसका नाम है अनंतेश्वर। वैसे उड़पी मंदिर बहुत छोटा है, लेकिन अनंतेश्वर मंदिर जो है थोड़ा सा खुला मैदान था, बड़ा भी था। उधर बैठ के प्राय रोज प्रवचन दिया करते थे श्रीपाद मध्वाचार्य। एक दिन, यानी इसी दिन जिसको मध्व नवमी कहा जाता है, आज नवमी है, कल अष्टमी था, परसों सप्तमी था, अद्वैत सप्तमी, अद्वैताचार्य की प्राकट्य, भीष्माष्टमी, भीष्मदेव का प्राकट्य कल, और आज जो है मध्वाचार्य का तिरुभाव दिवस, कल रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस। एक एक आचार्य का, अद्वैताचार्य भीष्म पितामह भी एक प्रकार का आचार्य है, समझ लीजिए महाजन है। तो श्रीपाद मध्वाचार्य बैठे अनंतेश्वर मंदिर में, उधर बैठ के वो प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन देते देते अचानक उनका जो प्रिय उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद, कंफ्यूज मत कीजिए, एक उपनिषद है इसका नाम है तैत्रेय उपनिषद, तैत्रेय बड़ा प्रसिद्ध उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन मध्वाचार्य को बड़ा प्रिय उपनिषद है। क्यों? क्योंकि ऐत्रेय उपनिषद जो है उसके अंदर द्वैत सिद्धांत को स्पष्ट रूप में उल्लेखन किया गया है। जैसे भगवद्गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं द्वायमो पुरुषो लोके क्षरक्षर क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्यः परमात्म्य दुआवृतः व्यूलोकत्रयाविश्यः विवृत्तिवीरीश्वरः अस्मात् श्रमतीतोऽहमक्षराद्यपि उत्तमः अतोऽस्मि लोके ये वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। ये जो श्लोक है, उन श्लोकों में द्वैत सिद्धांत को बड़ा स्पष्ट रूप में कहा गया है। तो उसी प्रकार के जो द्वैत सिद्धांत जो हैं, आपको द्वैत मतलब जीव और आत्मा, परमात्मा, भगवान और जीव दोनों में भेद है। ऐसा नहीं कि दोनों मुक्ति के बाद वो दोनों एक बन जाते हैं, अद्वैत सिद्धांत के एकदम बिल्कुल विपरीत है, एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो ये जो सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले श्रीपाद मध्वाचार्य हैं। तो मध्वाचार्य ये ऐत्रेय उपनिषद के ऊपर व्याख्या करते हैं, ऐत्रेय उपनिषद को वर्णन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। करते 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 क्या हुआ, अचानक से स्वर्ग से ऊपर की देवताओं से बहुत फूलों की बरसात होने लगी। तो फूलों की बरसात धीरे 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 वो पूरा मध्वाचार्य के शरीर को ढक रहा है। इतना फूल गिर पड़े अद्भुत से फूल कि पूरा मध्वाचार्य का शरीर जो है फूलों के अंदर चला गया। अचानक एकदम आवाज शांत हो गया। तो सत्यतम तीर्थ मध्वाचार्य के जो शिष्य है और उनके भाई भी हैं, तो तुरंत भागते भागते आए, तुरंत सारे फूलों को ऐसे ऐसे बिखरा के देखा, मध्वाचार्य है ही नहीं, खाली उनका अंगवस्त्र है। मध्वाचार्य वायु है और साथ साथ में चिरंजीवी भी है क्योंकि हनुमान जी है। तो अदृश्य रौप्य पीठे, रौप्य पीठ में अदृश्य हो गए और कहां प्रकट हुए, प्राकट किए कहां, बदरी तटे। अभी भी श्रीपाद मध्वाचार्य बदरी में है, उत्तर बदरी। वैसे आप लोग जो बदरी जाते हो विशाल बदरी है, उत्तर बदरी नहीं है। तो वास्तविक बदरी जो है वो उत्तर बदरी कहा जाता है, जहाँ व्यासदेव निवास करते उसको उत्तर बदरी कहा जाता है। और आप विशाल बदरी विशाल जाएंगे, बदरी विशाल से और आगे जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे इसे शरीर के द्वारा हम जा नहीं सकते उधर, उसके लिए आपको थोड़ा सा दिव्य शरीर की आवश्यकता होता है। व्यासदेव का आश्रम है, जहाँ व्यासदेव अनेक अनेक ऋषियों को बैठा के 24 घंटा प्रवचन देते रहते हैं। 24 आवर्स नॉन स्टॉप क्लास, ऐसा नहीं कि थोड़ा एक घंटा भागवतम क्लास हो गया समाप्त हो गया, नहीं, 24 आवर्स भागवतम क्लास चलता रहता है व्यासदेव के इसमें। और केवल बड़े बड़े ऋषि नहीं, बड़े बड़े संत नहीं, सारे ऋषि के नारद इत्यादि सब लोग उधर रहते हैं। सारे अवतार, जितने भी अवतार भगवान ने अवतार ग्रहण किया, सारे अवतार बद्रिकाश्रम में उपस्थित है। और जब व्यासदेव इन अवतारों की लीला को वर्णन करते हैं, मान लो कि उनको वर्णन करना वामन देव के अवतार की लीला, तो वामन देव जो वो लीला दिखाते और देख के देख के व्यासदेव सबको वर्णन करते हैं। ये कुछ अलग सा आश्रम है, इसलिए बद्री का आश्रम जो है उत्तर बद्री, जहाँ व्यासदेव निवास करते हैं, ऐसा माना गया है कि सारे ऋषियों का वो एक प्रकार का घर जैसा है। वो कहीं भी जाएंगे वापस उधर ही पहुंचेंगे, उनको कहीं भी भ्रमण करने जाएंगे कोई भी ऋषि हो तो वापस उनको उधर आके पहुंचना है। इसलिए बद्री का आश्रम को बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। अनेकों अनेकों भगवान की लोकों में ये जो बद्री का आश्रम जो है, जहाँ व्यासदेव निवास करते हैं, नित्य निवास करते हैं, व्यासदेव चिरंजीवी हैं, उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि जगह भगवान की लीला कथा होती है, भगवान उधर उपस्थित होते हैं, और जहाँ व्यासदेव क्या कर रहे हैं, सारे लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं, तो सारे भगवान के स्वरूप उधर होंगे। और वो कहा कि हाँ भगवान की लीला होते हैं, भगवान होते ही है। तो उधर मध्वाचार्य अभी भी है, ही स्टिल देयर। जैसे मैंने आपको संडे के दिन कहा था कि इस बार हमको चैतन्य चरितामृत पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि ये चैतन्य चरितामृत पूरा होकर 400 साल हुआ है। थोड़ा बहुत हम चैतन्य महाप्रभु की लीला और मध्वाचार्य के संबंध में थोड़ा चर्चा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने चारों आचार्यों को, चारों संप्रदाय के चारों आचार्यों को कृपा प्रदान किया। कैसे कृपा प्रदान किया उन्होंने? श्रीपाद रामानुजाचार्य को अपनी लीला में श्री अनंत के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। रामानुजाचार्य चैतन्य महाप्रभु लीला में अनंत, श्री अनंत के रूप में आए और उनका और लक्ष्मी प्रिया के विवाह कराए। चैतन्य भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है किस प्रकार श्री अनंत बड़े भाव विभाव के नृत्य करने लगे। कब? चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी प्रिया का विवाह हुआ था नवद्वीप में। उस समय श्रीमानंत को अनंत, श्री अनंत का जो पूजा करने की जो विधि है, श्रद्धा को देख के उधर के नवद्वीप वाले सब लोग कहते थे क्या ये रामानुजाचार्य का अवतार है। भले ही उनको मालूम नहीं था कि सच में रामानुजाचार्य का अवतार है, लेकिन उन्होंने इनकी जो श्रद्धा है अर्थविग्रह की सेवा में, पंचरात्र विधि का विधि विधान पालन करने की, उसको देख के सब लोग अचंभित हो जाते। तो चैतन्य महाप्रभु ने अंत में उनको अपने आप को विस्तार किया लक्ष्मी नारायण के रूप में और दिखाया, और बाद में लक्ष्मी नारायण एक होकर चैतन्य महाप्रभु हुए, और इस स्वरूप को देखते देखते श्री अनंत ने अपने शरीर त्याग कर दिया। और निम्बारक आचार्य ऐसा कहते हैं कि केशव कश्मीरी के रूप में आए, लेकिन उसके विषय में थोड़ा सा भेद है, लोगों का मतभेद है। लेकिन विष्णु स्वामी आए श्री वल्लभाचार्य के रूप में। वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु मुलाकात हुआ, महाप्रभु किसी को भी अपना चरण स्पर्श करने नहीं देते थे, बहुत कम लोगों को, लेकिन श्रीपाद वल्लभाचार्य घर में स्वयं गए और वल्लभाचार्य ने क्या किया, श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण सेवा किया, चरण को धोए और उनके चरण का जो जल है उनको स्वीकार किया, अपने परिवार वालों को भी अर्पण किया। तो उन्होंने कृपा किया श्रीपाद वल्लभाचार्य को, जो विष्णु स्वामी के ही अवतार है। और इस प्रकार ये तीनों आचार्यों को कृपा दिया। अभी मध्वाचार्य कैसे आए चैतन्य महाप्रभु लीला में? तो महाप्रभु ने क्या किया, मध्वाचार्य के जो कार्य है उससे अति प्रसन्न होकर ने कहा कि मैं आपके संप्रदाय में दीक्षा लूंगा। तो इस प्रकार श्रीपाद मध्वाचार्य के संप्रदाय में लक्ष्मीपति तीर्थ आते, लक्ष्मीपति तीर्थ ने दीक्षा दिया माधवेंद्रपुरी को। ये दीक्षा हुआ था पंडरपुर में लक्ष्मीपति तीर्थ माधवेंद्रपुरी को दीक्षा दिया। तो माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को दीक्षा दिया, ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा दिया। तो इससे देखा जाए तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है मध्वाचार्य की कृपा किया। अभी भी हम चर्चा करते हैं हमारा संप्रदाय का नाम क्या है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्व। तो मध्वाचार्य के उन्होंने विशेष कृपा उनके संप्रदाय में दीक्षा लेके उनको ख्याति प्रदान किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो लक्ष्मीपति तीर्थ वो शिरूर मठ के हैं, ऐसे 8 मठों को मध्वाचार्य ने स्थापना किया। एक मठ है जिसका नाम है शिरूर मठ, उनके लाइन में आने वाले जो आचार्य है वो लक्ष्मीपति तीर्थ। तो लक्ष्मीपति तीर्थ को ये महासौभाग्य प्रदान किया श्रीपाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने, उनके लाइन में माधवेंद्रपुरी को दीक्षा दी। तो चैतन्य महाप्रभु जब मध्वाचार्य जब अपना भाष्य वेदांत सूत्रीकृत भाष्य को रचना किए, रचना करके वो एक कॉपी जो है पहले से उडुपी भेज दिए थे। तो उन्होंने सोचा कि सीधा बद्री से मैं उडुपी नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने प्रचार के हेतु बनारस होते हुए वो कहाँ पहुँचे, नवद्वीप पहुँचे। वैसे ये जो लीला है नवद्वीप गए, नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु मुलाकात हुआ, इसका वर्णन आपको सुमध्वज में प्राप्त नहीं होता, लेकिन एक मध्व का आचार्य तो ने निश्चित रूप से स्वीकार किया। मध्वाचार्य बनारस गए तो बनारस से उड़ीसा गए तो बिहार होते हुए गए, इसका अर्थ निश्चित रूप में बंगाल गए होंगे और नवद्वीप गए होंगे, क्योंकि उस समय नवद्वीप जो है वो बड़ा प्रसिद्ध था। किसके लिए? शिक्षा के लिए, न्याय के लिए प्रसिद्ध जगह था नवद्वीप जो है, न्याय शास्त्र के लिए बड़ा प्रसिद्ध जगह। जैसे 4 संस्कृत के जो विभाग है उसके लिए 4 पीठ माने जाते थे, उस समय की बात है। न्याय शास्त्र के लिए नवद्वीप, व्याकरण के लिए बनारस, और वेदांत के लिए मिथिला, और छंद के लिए कंची मदुरई। तो ये 4 मुख्य स्थान हैं। अगर मध्वाचार्य अगर बनारस गए निश्चित रूप से नवद्वीप गए होंगे। तो भविष्य पुराण में इसका वर्णन आता है, भक्तिनोद ठाकुर अपने जो नवद्वीप धाम हत में उसके अंदर वर्णन करते हैं किस प्रकार मध्वाचार्य का मुलाकात चैतन्य महापुरुष 2 बार हुआ। कोई बोलते स्वप्न में आए, कोई बोलते मुलाकात हुआ, लेकिन जो भी है दोनों के बीच में चर्चा जरूर हुआ। सबसे पहला चर्चा है कि मध्वाचार्य जब बंगाल गए तो उन्होंने देखा तो बंगाल में सब लोग क्या कर रहे, काली का पूजा कर रहे हैं। जहां जहां जाते सब लोग उधर जो बकरियों को लेके काट रहे, सब कुछ ये अत्याचार हो रहा है, बहुत वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रहा है। मध्वाचार्य को ये देख के रहा नहीं गया, तो उन्होंने सोचा, विचार कर रहे थे लोग इतने निर्दयी कैसे हैं। तो उधर बैठ के शांतिपुर पहुंचे। शांतिपुर में जाते जाते ही उनके अंदर स्वाभाविक तरीके से एक ऐसा बात आए कि मैं नाम संकीर्तन करूं। तो बड़े दिव्य भाव से नाम संकीर्तन करते करते उनके आंखों में आंसू आने लगे, बड़ा दया की भावना आने लगी और ऐसी प्रार्थना करने लगे जोर जोर से, हे भगवान हे भगवान। तो उधर के भगवान कौन है, उधर के तो अधिष्ठात देव कौन है, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। प्रकट होके मध्वाचार्य को बोले तुम चिंता मत करो, मध्वाचार्य को, क्योंकि मध्वाचार्य ने देखा केवल बंगाल में नहीं जहां वो रहते हैं, यानी जहां जन जिस स्थान के उधर है, कर्नाटक में भी इस प्रकार के बहुत लोग थे। तब चैतन्य महाप्रभु को विशेष आज्ञा दिया किसी न किसी तरीके से आप क्या करो, ये जो एनिमल सैक्रिफाइस है उसको आप बंद करो। ऐसे तो भगवान एक ही कृष्ण है और इन सब लोगों को आप कैसे किसी न किसी तरीके से कृष्ण की सेवा लगा दो और ये जो एनिमल सैक्रिफाइस उसको बंद करा दो। तो मध्वाचार्य ने कितने महाप्रभु की दिव्यवाणी सुन के बड़ा प्रसन्न होकर ने कहा कि मैं किसी न किसी करूंगा। और बाद में कर रहे थे, वो सोच रहे थे मैं कैसे करूं क्या करूं। ये तो दिव्य स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु का, ये तो गुप्त रूप है, वेदों में वर्णित है, मैं जाके सबको बताऊं, सबको उल्लेख किस करूं, प्रकाशित करूं। तो वापस महाप्रभु प्रकाशित प्रकट हुए। मैं कहा कि अभी मत कहना, मैं जब आऊंगा तो अपने आप लोगों को पता लगेगा, लेकिन अभी तुम्हारा कर्तव्य है ब्रह्मसूत्र का भाष्य को जो रचना कर रहे हो या थोड़ा बहुत तो किया है, तो क्या करो ये दो सिद्धांत मैं देता हूं, मायावाद का खंडन और दूसरा है विग्रह की सेवा। सत्य विग्रह को सत्य मानना मतलब तुम्हें प्रतिमा नहीं साक्षात हृदयेन्द्र नंदन, ये दो बातों को तुम स्वीकार करके तुम अपना मध्य सिद्धांत को स्थापना करो, भविष्य में आके तुम्हारे संप्रदाय में दीक्षा लूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य से दो बार इस प्रकार मुलाकात हुआ। तो मध्वाचार्य ने इन कार्यों को बड़ा अच्छी तरीके से संभाला, खास करके ये जो काली पूजा के समय या दुर्गा के समय सामने इनको बकरियों को काटना, ये सब चीजें जो है एनिमल सैक्रिफाइस, उसको बंद कराया। वो कैसे बंद कराया, सीधा जाके बोले बंद करो नहीं हो पाएगा। तो मध्वाचार्य ने एक विधि बनाया, क्या बनाया, ठीक है अगर आप ये वेदों में कहा गया कि वेदों में तो आता है कि आपको इस प्रकार ये करना चाहिए, सैक्रिफाइस करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, इनको आप बकरी को लाना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, सब लिखा हुआ है, तो क्या करें। मध्वाचार्य ने कहा तो उन्होंने ऐसे उनकी शक्ति के द्वारा स्थापना किया, आप क्या करो एक भोपला लेके आओ, क्या कर भोपला को काटो, तुम्हें रक्त तो आता नहीं है तो पानी में कुमकुम डालो। तो अभी देखो जहां जहां ये सैक्रिफाइस होता है, कोई भी यज्ञ होता है, उसमें भोपला को काटते हैं कि नहीं, और कुमकुम को पानी में डालते उसको रक्त के रूप में वो करते हैं, ये क्योंकि वेदों में ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे अभी, मध्वाचार्य ने इसको रिप्लेस कर दिया। अभी भी आप जाके देखेंगे दशहरे के समय में या कोई अन्य उत्सवों के समय में गाड़ियों के ऊपर, बस के ऊपर, या अपने अपने मान लो कार है किसी का, कोई गाड़ी है, कोई अपना ये है, तो उसके ऊपर आप कुमकुम का पानी लगाते हैं, चलाते हैं। पहले लोग क्या करते, खून चलाते थे, मध्वाचार्य की वजह से प्राय ये जो एनिमल सैक्रिफाइस जो बंद हो गया, कुछ ही जगह बच गया बस, लेकिन प्राय सब जगह बंद हो गया, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। मध्वाचार्य पहले मतलब इतना भयानक स्थिति थी, हर जगह 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 लोग जो है वो एनिमल सैक्रिफाइस कर देते। तो महाप्रभु का आदेश के अनुसार मध्वाचार्य ने यही कार्य किया। दूसरा ने सोचा कि इतने सारे लोग देवताओं की पूजा कर रहे, जाके बोले कि दुर्गा का पूजा मत करो, शिव जी का पूजा मत करो, गणेश का पूजा मत करो, वो लोग तो करने वाले नहीं है। तो मध्वाचार्य ने अपनी प्रतिभा से ऐसी व्यवस्था किया, ठीक है आपको जिनको पूजा करना है करो, लेकिन क्या करो, कोई भी देवता शालिग्राम के पूजा के बिना कोई चीज को स्वीकार नहीं करते, सब शालिग्राम की सेवा। उन्हें क्या किया, सारे मंदिरों में शालिग्राम की स्थापना करा दिया, हे दुर्गा ही दुर्गा जी बैठी है, लेकिन गले में तुलसी माला है, दुर्गा को तुलसी से क्या लेना देना भाई, ये असत में क्या है, वो पुजारी क्या करते, सारे वैष्णव मंत्रों के द्वारा शालिग्राम की पूजा करते हैं और प्रसाद के रूप में दुर्गा को दे देते हैं, और सब लोग सोचते हैं हाँ दुर्गा का प्रसाद है, दुर्गा का प्रसाद नहीं है, ये शालिग्राम का प्रसाद है। इसके द्वारा सब लोगों को उन्होंने विष्णु भक्त बनाया, ये मध्वाचार्य की विशेषता है। वैसे अनेकों अनेक विशेषताएं हैं, देयर सो मेनी थिंग्स। मध्वाचार्य का जो जीवनी है बड़ा अद्भुत है, बचपना भी बड़ा अद्भुत है, हर तरीके से देखा जाए, सिद्धांत के दृष्टिकोण से देखा जाए बड़ा अद्भुत है, और केवल एक स्टोरी के रूप में भी सुना जाए उनके जो लीलाएं बड़ा अद्भुत है। वो इतना खा जाते थे, खास करके जी पहली बार उड़पी आए ब्रह्मसूत्र रचना करने के बाद, पांच छह ब्राह्मणों को नियुक्त किया बड़ा फीस बनाने के लिए उनके शिष्यों को, उनके साथ में 400 शिष्य थे और मध्वाचार्य 400 मिला के लोगों ने बहुत बड़ा फीस बनाया। और जब फीस बनाए, जितने 400 शिष्य खाते थे उससे ज्यादा मध्वाचार्य अकेले खा लिए, एक बार शादी में गए थे, शादी में नहीं गए थे, वो गोवा में पर्यटन कर रहे थे, तो स्वामी सन्यासी आए तो किसी घर में रुकाना पड़ेगा, किसी घर में रुका है, तो उसके बाजू वाला घर में विवाह था किसी का, शादी का उत्सव था, तो शादी होता है तो बहुत सारा सामान आता है, अपने घर में रख नहीं सकते, तो कुछ किया कि बहुत सारा सामान जो दूसरे घर में रखे थे, क्या मधुआ चार रुके 2000 केले रखे थे। अगला दिन आया सबको केला बांटने के लिए, आके देखे केवल छिलके ही और कुछ नहीं, केला ही 2000 खत्म हो गया। खासकर केरल के जो खेला होता है इतना लंबा रहता है नेंद्रा नेंद्रवाड़े। तो मध्वाचार्य जटराग इतना तेज है, अन्नप्राश संस्कार में बच्चों अन्नप्राश होता है ना, वो इंतजार नहीं कि अन्नप्राश होने तक इंतजार करे, खुद अपना कर लिए, छोटे से बालक है अभी, भाई उठ भी नहीं पा रहे, सोए हुए हैं, मतलब इतना कुछ महीने के, बस 5-6 महीने 6 महीने की बात है, उनको हर आधा घंटा में भूख लगता है, अभी माँ कितना दूध पिलाई होता है, अमूल फैक्ट्री तो है नहीं उनके पास दूध पिलाए बस वापस आधा घंटा में वापस भूख लगता है। तो माँ ने कहा था मध्वाचार्य को, बहन को, देखो ये बच्चा जो बहुत बार बार रोता रहता है, थोड़ा देखभाल कर रहे, मैं थोड़ा सा जाके आती, कुछ काम है। तो गई तो आधा घंटे वापस बच्चा रोने लगा, इतना जोर जोर से रोने लगा, तो ये उनकी बहन घबरा गई, वो भी 5 साल की बालिका थी, वो बाहर जाके माँ का इंतजार कर रही है, अंदर बच्चा रो रहा है, ये घबराए हुए है। तो जैसे माँ भागते भागते आई तो बेटे ने कहा कि रो रहा है, रोना बंद नहीं कर रहा है, जल्दी चलो। माँ घबराते अंदर आके देखती है, ये बच्चा आराम से खेल रहा है, हंस रहा है। माँ ने कहा कि तो हंस रहा है, नहीं देखो, अभी रो रहा था, अभी हंस रहा है। तो माँ ने कुछ देखा, कुछ ऐसा मुंह में कुछ चबा रहा है, बच्चा चबा था ना कुछ, तो मुंह में क्या, मुंह खोल के देखा, उधर क्या था, हॉर्स ग्राम घोड़े के चने होते ना, चना चबा, ये क्या, ये कहाँ से, बाजू में देखा जो घोड़े के चने वगैरह जो है ना, वो गाय बैल को खिलाते हैं कि नहीं, बैल को वगैरह तो सब उसके लिए गोनी में रखते हैं, वो खिलाते हैं। तो बाजू में 40 किलो का एक वो चने का गोनी था, वो गोनी नीचे गिरा हुआ और 2-3 चीप पीस आजू बाजू गिरा पड़ा है, बाकी 40 किलो खत्म हो गया और कहाँ गया तुरंत डॉक्टर को बुलाई, डॉक्टर सब चेक किया, बोला एकदम बिल्कुल बराबर है ऐसे उनके अनेक अनेक लीला, मध्वाचार्य का जो लीला है बड़ा अद्भुत लीला है। एक बार राजा ने पूछा, मध्वाचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो दूसरे राज्य में गए, तो राजा कुआं खोद रहा था, बड़ा सब लोगों को जो भी अपने राज्य से पार करता है उनको उधर काम करना पड़ता है, तालाब खोदने में। तो मध्वाचार्य से राजा ने कहा आपको एक खुदाई करना पड़ेगा। मध्वाचार्य ने कहा हम जरूर करेंगे, नहीं हम तो सन्यासी है, ब्राह्मण है, हमको ये सब नहीं मालूम, आप सिखा सकते हो, आपको मालूम है? राजा ने कहा क्यों नहीं मालूम, मैं सिखाऊंगा, तो कैसे करना दिखाइए। तो राजा खुद अपना खुदाई करना शुरू किया, मध्वाचार्य ने उनका आशीर्वाद दे के आगे चला गया। उनका ऐसा मिस्टिक था, वो राजा दिन भर खुदाई करने लगा, उसको मालूम नहीं पड़ा कभी सन्यासी लोग चले गए। ऐसे बड़े बड़े मजेदार कहानी उनके पास उनका है मध्वाचार्य का। तो उनका सिद्धांत और उनका जो लॉजिक है इतना पावरफुल है, इससे उनका नाम है अनुमान तीर्थ, उसके बहुत सारे नाम है, मध्वाचार्य, पहले उनका नाम तो वासुदेव, मध्वाचार्य, अनुमान तीर्थ, वासुदेव तीर्थ, और उनका पूर्ण प्रज्ञा तीर्थ, उनका अनेकों नाम है इस प्रकार। तो श्रीपाद मध्वाचार्य के संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा लिया और हमारा इसलिए नाम पड़ा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। वैसे देखा जाए जो सिद्धांत में कोई भेद नहीं है, लेकिन रस भेद जरूर है। मध्वाचार्य संप्रदाय में जो जुड़े हैं उनका ज़्यादा दास्य और थोड़ा सा गौरव वात्सल्य, ये दो प्रकार का भाव को वो स्वीकार करते हैं या उसके अंतर्गत सेवा करते हैं कृष्ण की। लेकिन जो मूल विग्रह जिनका सेवा उड़पी में होता है, वो विग्रह भले ही द्वारका से आया, लेकिन द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन को प्रकाशित किया था, इसलिए श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं वृंदावनांजन गोकुल चंद्र, उड़पी कृष्ण के विषय में। तो वृंदावन के विग्रह उडुपी कृष्ण कहीं है और कहने वृंदावन के विग्रह है, उसकी सेवा उधर करते हैं। चैतन्य महाप्रभु उडुपी गए, उडुपी में उधर उन विग्रहों का देख के भी नर्तक गोपाल ऐसा वर्णन है चैतन्य चरितामृत, नर्तक गोपाल उनके सामने जाके दिव्य तरीके से कीर्तन किया, नृत्य किया और हमारा बहुत गहरा संबंध है मध्वाचार्य के साथ। और कल है रामानुजाचार्य का, तो सारे भक्तों से निवेदन है कि आप आज मध्वाचार्य के विषय में पढ़ा तो कल आप रामानुजाचार्य के विषय में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य की, श्री प्रभुपाद की जय।